जनों, आज 2 जुलाई 2020 का दिन आपके लिए कल्याण में हो। आज मैं आपको अध्यात्म सम्मेलन के 3वें सब्जेक्ट की ओर ले जाती हूँ। 3वें सब्जेक्ट का विषय का नाम है आधुनिक समाज में नारी की देन, द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न सोसाइटी। प्रिय भक्तजन, आप सभी जानते हैं कि आज का समय कैसा है और आज की नारी कैसी है, वो क्या देखती है, वो सभी को मेरी तरह मालूम है, लेकिन फिर भी विचार का विषय है, इसलिए कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आधुनिक समाज सुशिक्षित समाज है, सभ्यता की दृष्टि से भी समाज ने काफी उन्नति की है, और संस्कृति से की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृति की दृष्टि से भी भारतीय समाज अथवा आधुनिक समाज काफी उन्नत है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का निर्माण अकेले पुरुष द्वारा ही नहीं हो सकता, राष्ट्र या समाज की स्त्रियां पत्नी रूप में साहस प्रदान करती हैं तथा मातृ रूप में संतति को इस प्रकार शिक्षित करती हैं कि जिससे वह स्वतंत्रता, आत्म सम्मान और आचरण की उच्चता के लिए सद प्रयत्न करने का प्रयत्न करे। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, इसी प्रकार कोई भी समाज स्त्री या पुरुष दोनों से केवल किसी एक वर्ग के द्वारा उन्नत नहीं हो सकता। हम अभिन्न नहीं हैं, हम में भिन्नताएं हैं, किंतु ऐसी भिन्नताओं में एक दूसरे की विरोधी भिन्नता न होकर हम परस्पर पूरक का काम करते हैं। इसी में मानव की पूर्णता निहित है, देने के बिना देव नहीं। उसी प्रकार सोल तत्व चेतन तत्व नहीं हो सकता, चेतन तत्व स्थूल को चेतना देता है तथा स्थूल चेतन को साकार रूप। इतना ही नहीं, हिंदू दृष्टिकोण से ईश्वर की कर्तृत्व शक्ति स्त्री स्वरूपा है। यही कारण है कि प्रत्येक दुख एवं विपत्ति के समय समाज के समस्त देवता आदर्श व्यक्ति प्राण पाने के लिए शक्ति को ही पुकारते हैं, और जहाँ पुरुष वर्ग असफल सिद्ध होता है वहाँ स्त्री वर्ग विजय प्राप्त करता तथा असत्य को दूर भगाकर सत्य की पुनः प्रतिष्ठा करता है। जगत में ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है माँ, दुर्गा माँ, मधुरतम नाम है माँ। भारतीय महिलाओं की अवस्था में उन्नति और प्रगति करने के लिए या उनका पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग जाना या अंग्रेजियत धारण कर लेना सचमुच उपयुक्त होगा, प्रश्न है? नहीं, उत्तर है। भारतीय स्त्रियों को तो धर्म के लिए अपने समाज की परंपराओं को जीवित रखना होगा, उन्हें विदेशी विचारों को त्याग कर अपने गूढ़ तत्व अपनी संस्कृति को अपनाना होगा। आदिकाल में समाज में अपाला, घोषा आदि और कई ब्रह्मचारिणियां सन्यासिनी स्त्रियां हुई हैं। घोषा बन ऋषि की कन्या थी, उसको कोढ़ होने से विवाह नहीं हुआ, फिर अश्विनी कुमारों की कृपा से उसका कोढ़ दूर हुआ। वह विदुषी और ब्रह्म बादरी थी, इन्होंने स्वयं ब्रह्मचारिणी के रूप में ब्रह्मचारिणी कन्या के समस्त कर्तव्य का उल्लेख 2 सूक्तों में किया है। इसके पश्चात आदि काल में अपाला आती है, अति मुनि के वंश में पैदा हुई थी, इसे भी कोढ़ हो गया था, उनके पति ने इसे घर से निकाल दिया था, पहले में बड़ी दुखी रहती थी, इंद्र की आराधना की और ब्रह्म बादनी बन गई। वेग वेद के अष्टम मंडल के 91 में सूक्त की 107 तक ऋचाएं इन्हीं की हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाला और घोषा तो है ही है, इसके साथ ही उस काल में सावित्री जो अपने पति की जीवात्मा को नियम से वापस मांग कर लाती है, वो हमें अध्यात्म में आत्मा के क्षेत्र में कितना बल देती है और कितना बल हमें प्राप्त हुआ है, जैसी अनेक नारियां उसमें हुई जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ दिया। फिर हम द्वापर त्रेता में आते हैं। त्रेता युग में हम सीता जी के देन को देखते हैं। सीता जी ने क्या देन दी, इसके विषय में मैं ज्यादा नहीं होंगी, पर सीता जी ने जो देन दी है वो है पवित्रता। पवित्रता से भी पवित्र है सीता जी। और अनसुया जी को देखिए, अनसुया जी भी उसी समय में हुई जिन्होंने भगवान को ही बच्चे बना दिया। तो स्त्री में ऐसी शक्ति है जो समाज को पलट के रख सकती है, किया है, देन दी है स्त्रियों ने ऐसी। और द्वापर में द्रौपदी जैसी स्त्रियां मिलती हैं जिन्हें भगवान में प्रगाढ़ विश्वास है। कलयुग में भी कम नहीं स्त्रियों की देन। ये तो हमारा टॉपिक ही है कि आज आधुनिक समाज में स्त्रियों की क्या देन है। तो हम देखते हैं कि रानी झांसी खूब लड़ी हुई धनी हुए तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता के लिए हमें बलिदान झांसी जी ने ही दिया है। इसके साथ हम देखते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में माँ शारदा का नाम आता है। और भी राजनीतिक क्षेत्र में देखो, सामाजिक क्षेत्र में देखो, किसी भी क्षेत्र में जाएं तो हमें नारी की देन मालूम होती है। मातृ देवो भव के रूप में नारी की देन जीवन का गौरव है। दस कहते हैं कि जननी का गौरव उपाध्याय से 10 लाख गुना, आचार्य से 1 लाख गुना, पिता से 1000 गुना बढ़कर बताया गया है। माँ इतनी महान है, वो इतनी देन देती है कि उसका स्थान आचार्य से भी, उपाध्याय से भी और पिता से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि उसने देन दी है, वो देन देती है, वो कुछ देती है, वो लेती नहीं है। समाज में नारी सब कार्यों में प्रथमशील है और नारी सब कार्यों में दक्ष भी है और समाज को सही दिशा भी देती है। नारी को धर्म की सही दिशा देने की मानो एक आदत ही है, वो समाज को सही दिशा देने की लिए ही प्रयत्नशील रहती है। और अगर हम दूसरे क्षेत्रों में देखें तो दर्शन कहते हैं कि धर्म क्या है। वो कहते हैं दार्शनिक स्थिति में धर्म का माना गया है जिससे लौकिक उन्नति हो और साथ ही मुक्ति प्राप्त हो, वो ही अभ्युदय है, वो ही धर्म है। ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। तो नारी जो है वो समाज को लौकिक उन्नति भी देती है और साथ में मुक्ति भी देती है। नारी इस परिभाषा की पूर्ण रूप है। नारी मानव को परम पद दिलाने वाली एक महान शक्ति है। आधुनिक समाज में स्त्री की स्वतंत्रता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है और नारी भी इसी कारण समाज को वैज्ञानिक व आध्यात्मिक व राजनैतिक व और भी प्रत्येक क्षेत्र को छूती है और अपने राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित है। और समाज का को तो वो ऊंचा उठाने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील है। अतः आधुनिक समाज के लिए नारी की जो देन है उसकी व्याख्या करना शब्दों में थोड़ा कठिन पड़ रहा है। आज नारी समाज के सार्वजनिक कार्यों में भाग लेती है। गांधी जी ने कहा था स्त्रियों का समाज में पूर्ण स्थान होना चाहिए और उन्हें पूर्ण अधिकार भी मिलने चाहिए। आज की नारी आधुनिक समाज में पूर्ण प्रगति पर है। आज की नारी देश विदेश में पुरुषों के साथ और पुरुषों की भांति ही देश राष्ट्र समाज की उन्नति में पूरा सहयोग दे रही है। आधुनिक समाज में भी नारी का पात्रगत धर्म कुछ कोटि में है और आज भी नारी अपनी पवित्रता का पूर्ण अपनाते हुए समाज और राष्ट्र की आभा है। नारी की देन इससे भी बढ़कर है। नारी वायुसेना में, स्थल सेना में, जल सेना में कार्य कर रही है। आधुनिक समाज में नारी की देन अनुपम है। वह एक कन्या है, वह एक स्त्री है, वह एक माता भी है और साथ साथ अपने समाज को उच्च दिशा प्रदान करने वाली एक महाशक्ति भी है। आज की नारी के विषय में ये कहना उचित ही होगा कि नारी के आंचल में जीवन है, उसके आंचल में सुधा वृष्टि है, सुधा वृष्टि में प्रेम भी है और प्रेम प्यार में वो पली सृष्टि भी है। तो आगे लिखते हैं, अगर नारी समाज को देर ना दे तो इतिहास अधूरा रह जाएगा और जग जीवन भी नारी की स्फूर्ति के बिना पीछे छूट जाएगा। अब मैं आपको कुछ किसी लेखक के कुछ लिखा है, किसी लेखक ने उसका विषय में पढ़कर सुनाती हूँ। संसार के महान आत्माओं की जन्मदात्री ये नारी ही है। यदि स्वतंत्र भारत में ये सुरक्षित, सुशिक्षित और सुसंस्कृत हो गई, तो ये अपना मूल्य दान अनवरत रूप से देती रहेगी और हमारी ये स्वाधीनता हमसे कभी नहीं छीनी जा सकेगी, क्योंकि जिसके हाथ में पालने की डोरी है वही संसार पर राज्य कर सकती है। किंतु यदि नारी को आत्मा किंतु यदि नारी की आत्मा को देशवासियों ने शांति नहीं दी, उसके धड़कते हुए कलेजे पर अमृत नहीं बरसाया, उसकी दयनीय दशा पर ध्यान नहीं दिया, उसके पवित्र सत्यम सम्मान की रक्षा नहीं की, तो हमें वीर आत्माओं के दर्शन सर्वथा दुर्लभ हो जाएंगे। आज इस अंतर भारत के आधार स्तंभ कल के नागरिक वे बच्चे हैं जो अभी तक माँ के दूध के साथ चिपके हुए हैं, अबोध हैं। बच्चे राष्ट्र की विभूति तथा एक अविभाज्य संपत्ति है जिन पर प्रत्येक राष्ट्र को अभिमान होता है। यदि माँ की उच्च भावनाएं उन्हें दूध के साथ मिलेंगी तो निश्चय जानिए वीर भोग्या वसुंधरा की युक्ति अक्षर सत्य सिद्ध होगी। किन्तु यदि उन्हें उनका कर्म क्रंदन तथा उत्तम स्वास्थ्य ही मिला तो कमजोर और डरपोक प्राणी बनेंगे। तथा देश की भाग्य निर्माते ये लाखों माताएं हैं जो आज सर्वत्र अपमानित और लांछित होकर भोजन ही भूख से छटपटा रही हैं, वस्त्र ही जाड़े की ठंडी हवा में कांप रही हैं, जन ही बिल्कुल आश्रिता है जो दिन दहाड़े उन नीच गुंडों का शिकार बन जाती है, जो उनके प्राण हन करने से पहले उनका पवित्र मांगुल्य शील अपहरण कर लेते हैं। भारतीयों चेतो, इन हसाओं की रक्षा के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। देखो पुण्य श्लोक महर्षि की अमर आत्मा स्वयं तुम्हें चेतावनी दे रही है। उठो, आंखें खोलो, सारे भेद और मतभेद भुलाकर मानवता के नाते जातीय संगठन में बन जाओ। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक विचार का समर्थन करो। यहीं पर यदि कोई आता है तुम्हारी माँ बहन को तेजी नजर भी करे तो तुरंत उसकी आँख निकाल कर उसे मृत्यु दंड दे दो। उनके शील की रक्षा के लिए अनेकों अमर आत्माएं तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन करेंगी। क्या आप भूल गए, इसी भारत में प्राचीन से लेकर अरबा चीन युग तक हजारों नारी रतन सुलभा, मैत्री, सीता, सवित्री, सुमित्रा, पटाचारा, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, स्तुभा तथा स्वरूप रानी जैसी पैदा हुई थी। ये नारी ही सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की अखंड त्रिवेणी है। ये दिन दूर नहीं जब वे आपके आश्रय मात्र श्री लक्ष्मी और पद्मिनी के रूप में समारंगन में उपस्थित होंगी। नारी के हृदय में सेवा की गंगा है, वह त्याग एवं परोपकार से मंडित है, किंतु आज नारी देश के लिए संसद अर्पण कर रही है और करते ही सती होगी। आज देश की सेवा ही उसकी चंदन की चिता है, उसी पर जलकर वह अमर होगी। क्या राष्ट्रीय कवि मैथिली सेन के शब्दों में महात्मा बुद्ध की वीर पत्नी यशोदरा की युक्ति भूल गए, श्याम सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राण के प्राणों के पण में हम भेज देते हैं हरण में छात्र धर्म के नाते। नारी जीवन का अमर अभिलाषा है। नारी के हृदय का निवेदन पाकर जब पुरुष समांगन में उतरता है तो गैरी के प्राण देकर विजय प्राप्त करके ही दम लेता है। आज इसी वीर रस प्रवाहिनी नारी के प्रति आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो इससे भी अधिक आप जानते ही हैं, समझते ही हैं कि ऐसे तो हम नारी को कई दफा कोई आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि आज की नारी ऐसे वस्त्र पहनती है, ऐसे घूमती है, ऐसे बोलती है, है ना, जिससे कि लोग गुंडे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब महाभारत में एक स्थान पर आता है कि जब भीष्म पितामह में तीरों की शैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर जी ने जाकर प्रणाम किया, पांचों भाई गए थे। युधिष्ठिर जी ने कहा पितामह हमें कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए राजनीति की जिससे मैं अच्छा राजा बन सकूं। तो बहुत सी बातें बताते उन्होंने एक बात बताई कि वह राजा धन्य होता है, शूरवीर होता है जिसके साम्राज्य में स्त्री जाति रात को 2 बजे भी सुसज्जित होकर सुंदर वस्त्र पहनकर गहने आभूषण पहनकर अकेली शहरों में घूमती हो और कोई पुरुष उस पर कूद दृष्टि न रखता हो। तो स्त्री की स्वतंत्रता में, स्त्री की शक्ति में और स्त्री के मार्ग में पुरुष का बहुत सहयोग है। अगर पुरुष ठीक है तो स्त्री ठीक है। और स्त्री की देन मैं कहती हूँ कि युगो युगो से ही भाई है, बहुत है और आज भी स्त्रियाँ कम नहीं करती हैं। किसी भी इसमें देख लो स्त्री जो है किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आप अपने जीवन को लीजियो मेरी बहनों, आप ही देखो या आपने घर भी सजाया, आपने नौकरी भी की, आपने पैसे भी कमाए, आपने पत्नी बनकर के संतान भी दी, माता बनकर बच्चों को भी पाला, तो ये समाज को एक बहुत अधिक अच्छी से अच्छी देन है। इससे अधिक और क्या देन हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देते हुए जय माता दी गीता।